नंदिनी वॉशरूम के बाहर ही रुक गई थी, इप्सिता वॉशरूम के अंदर गई थी। एक मिनट बाद ही इप्सिता का फोन बजा। फोन की घंटी बजने पर नंदिनी ने ये देखने के लिए इप्सिता का मोबाइल फोन उठाया कि किसका फोन है। उसने देखा कि स्क्रीन पर उदय का नाम फ्लैश हो रहा था। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उदय का नाम देखकर उसने कहा, अरे ये तो ईशु के भाई का फोन कॉल है, क्या करूं, कॉल पिकअप करूं या नहीं। नंदिनी सोच ही रही थी कि उसने कहा, एक काम करती हूँ, कॉल पिकअप कर लेती हूँ, वरना कहीं मैं कॉल पिकअप ना करूं तो इप्सिता के भाई परेशान ना होने लगे। कॉल पिकअप कर लेना ही सही होगा, वैसे भी भाई का फोन है, जीजू का नहीं, जो मेरे रिसीव करने पर नाराज हो जाएगी। अपने आप से इतनी बात करके उसने जल्दी से कॉल पिकअप कर लिया। जैसे ही नंदिनी ने हेलो बोला, उदय तुरंत ही उसकी आवाज़ पहचान गया और मुस्कुराने लगा। लेकिन जैसे ही उदय को ये एहसास हुआ कि कॉल इप्सिता नहीं बल्कि नंदिनी ने पिक किया है, उसने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर पर हाथ रखते हुए कहा, ये इप्सिता के फ़ोन से नंदिनी की आवाज़ कैसे आ रही है, कहीं हमने जल्दबाजी में नंदिनी का नंबर तो नहीं मिला दिया। इतना बोलकर उदय ने जल्दी से अपना नंबर चेक किया, नंबर तो इप्सिता का ही था। नंदिनी को दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसने कहा, हेलो आप सुन रहे हैं, मैं नंदिनी बात कर रही हूँ, एक्चुअली ईशु वॉशरूम गई है और उसका फ़ोन अभी मेरे पास है। नंदिनी की बात सुनकर उदय ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी हमने तो बस ये पूछने के लिए कॉल किया था कि एग्ज़ाम हो गया ना, आज ईशु का पहला एग्ज़ाम था, कैसा गया उसका एग्ज़ाम। नंदिनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उसका एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ है और आप तो जानते ही हैं कि वो पढ़ने में कितनी अच्छी है और उसके जैसी इंटेलिजेंट लड़की तो अच्छा ही एग्ज़ाम देगी ना। उदय ने नंदिनी की बात सुनकर हामी भरते हुए कहा, हाँ मेरी ईशु बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी है, बाय द वे नंदिनी आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। नंदिनी उदय की बात सुनकर थोड़ी मायूसी से बोली, हाँ मेरा भी ठीक ठाक ही हुआ, वैसे हमें जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ा टफ एग्ज़ाम था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी तैसे कर दिया। नंदिनी काफ़ी फ्रैंक होकर उदय से बात कर रही थी, वे दोनों एक दूसरे से बात करने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहे थे। इससे पहले कि उदय कुछ और पूछ पाता, इप्सिता वॉशरूम से बाहर निकल आई। इप्सिता ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारे फ़ोन से किससे बात कर रही हो। नंदिनी ने तुरंत उसका फ़ोन उसे पकड़ाते हुए कहा, अरे वो तुम्हारे उदय भाई का फ़ोन है। उसने उदय से कहा, उदय लीजिए इप्सिता आ गई है, आप उससे बात करिए। इप्सिता ने नंदिनी के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो उदय भाई कैसे हैं आप, घर पर सब लोग ठीक तो है ना। उदय ने उसकी बात के जवाब में कहा, हाँ सब ठीक है, और हमने तो आपके एग्ज़ाम के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। इप्सिता ने खुश होते हुए कहा, हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ भाई। वो उदय से बात करते हुए कॉरिडोर से बाहर निकलने लगी और नंदिनी भी उसके साथ ही थी। इप्सिता और नंदिनी कॉलेज कॉरिडोर से बाहर आईं तो वहाँ गेट के पास ही उनके सामने एक लड़का खड़ा था। वो नॉर्मल कपड़े पहने हुए था, वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। उसके एक कान में प्यर्सिंग थी, उसके बाल नॉर्मल से थोड़े लंबे थे और हाईलाइट किए हुए भी थे। नंदिनी और इप्सिता को देखकर वो लड़का काफ़ी एक्साइटेड और खुश लग रहा था, इसलिए वो सीधा उन दोनों की तरफ आया और बोला, चलो आज मिल तो गई तुम दोनों। इप्सिता ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, हे ध्रुव कैसे हो। ध्रुव ने इप्सिता और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, यार इप्सिता कहाँ थी, होली के बाद से तो तुम ऐसे गायब हुई हो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया, ऐसा क्या करने लगी थी तुम कि तुमने तो मेरे हालचाल भी नहीं पूछे। इप्सिता और नंदिनी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। इप्सिता ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या बताऊँ यार, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही थी, हमें फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का कोई मौका ही नहीं मिला। ध्रुव इप्सिता की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, यार ईशु मैं कौन सा तेरे साथ हैंग आउट करने की बात कर रहा हूँ, तू तो जानती है ना तेरी वजह से मेरा प्रोजेक्ट भी फंसा हुआ है। अब बता तू शूट करने के लिए किस दिन फ्री है, मैं बहुत जल्द तेरे साथ शूटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। इप्सिता उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ध्रुव आई थिंक हम अब तुम्हारे साथ कोई भी फोटोशूट नहीं कर पाएंगे। ध्रुव उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं कर पाओगी तुम फोटोशूट, तुमने वेट पुट ऑन किया है क्या, या फिर तबीयत खराब है, कोई हेल्थ इश्यूज हो तो बताओ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। इप्सिता जो से मना करते हुए कहा, यार प्लीज हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सीरियस हैं, और तबीयत नहीं किस्मत खराब है हमारी, उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ध्रुव ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी सीरियस होकर बात कर रही हो, और बताओ तो क्या प्रॉब्लम है, और तुम्हें तो फोटोशूट में बहुत इंटरेस्ट है ना, आखिर यही तो तेरा सपना है ना, तुझे मॉडलिंग ही करनी है ना। इप्सिता भी जैसे ही ध्रुव के मुंह से ये बात सुनी, उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो इप्सिता खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। उसने नंदिनी की तरफ देखा, नंदिनी चुपचाप खड़ी थी। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे की तरफ घूरते देखकर ध्रुव ने कहा, गाइस क्या बात है, तुम दोनों इस तरह से एक दूसरे को लुक क्यों दे रही हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे भी बताओ क्या बात है, और इप्सिता, तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है क्या? अब तुम्हारा मॉडल बनने का सपना सपना नहीं रहा क्या? तुम्हें मॉडलिंग के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट हो गया है क्या? इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, ना ही हमारा सपना चेंज हुआ है और ना ही हमें किसी और चीज में इंटरेस्ट आया है। वो एक्चुअली अपनी फैमिली की वजह से हमें अपने सपने को यहीं बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ रहा है। ध्रुव ने जैसे ही ये बात सुनी उसने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती यीशु, तुम जानती हो ना, मॉडलिंग का सपना जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही सपना मेरा भी है। मेरे पास इसके अलावा और कोई करियर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं तेरे जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ। नंदिनी, जो अब तक की सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, देख ध्रुव, इप्सिता की प्रॉब्लम अलग है। वो मॉडलिंग करना चाहती है लेकिन शायद वो अब मॉडलिंग कर नहीं पाएगी, जस्ट बिकॉज इप्सिता की फैमिली उसकी शादी करवा रही है। इप्सिता ने नंदिनी की बात से सहमति देते हुए कहा, हाँ ध्रुव, नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक्चुअली हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करवा रहे हैं और हमें नहीं लगता अब हम दोबारा कभी भी कोई भी फोटोशूट करवा पाएंगे। ध्रुव, तुम काम करो, तुम अपने लिए कोई दूसरी मॉडल ढूंढ लो। जैसे ही ध्रुव ने ये बात सुनी वो बिल्कुल शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट, तुम शादी कर रही हो? लेकिन क्यों? और इतनी भी क्या जल्दी हो गई तुम्हें शादी करने की? अभी तो हमें हमारे करियर पर फोकस करना था ना, तुम इस शादी के लिए मना कर दो। इप्सिता ध्रुव की बात सुनकर बोली, हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड ध्रुव, हमारी फैमिली में पेरेंट्स के डिसीजंस के खिलाफ हम नहीं जा सकते। ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन क्यों यार, तुम अपने साथ साथ मेरे करियर तो भी दांव पर लगा रही हो। यू आर द ओनली वन जिसकी वजह से मैंने इतना कुछ अचीव किया है। तुम्हारा मॉडलिंग फेस और मेरी फोटोग्राफी स्किल्स, यार हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मम्मी पापा ने हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है।
ध्रुव ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन यीशु, तुम अपने मम्मी पापा को मना सकती हो। उन्हें बताओ कि ये तुम्हारा सपना है। वे जब ये बात सुनेंगे तो हो सकता है तुम्हारी शादी की डेट आगे बढ़ा दें। तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने के लिए प्रेशर ना डालें। नंदिनी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ध्रुव, तुम बेकार की बहस कर रहे हो। इप्सिता से आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इप्सिता के घर वालों को देखा है, वे उसकी बात नहीं सुनते। और तुम शायद भूल रहे हो, इप्सिता एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली में ऐसा ही होता है। राजपरिवार और फैमिली की इज्जत के लिए तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यीशु इस टाइम जिस सिचुएशन में है उसे अपनी फैमिली के खातिर अपने सपने का गला घोटना पड़ रहा है। इप्सिता नंदिनी के मुंह से ये बात सुनकर कुछ नहीं बोली, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में अभिमन्यु भी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, अब तक तो इप्सिता का एग्जाम खत्म हो गया होगा। अभिमन्यु इप्सिता के बारे में ही सोच रहा था और उसने अपने मन में कहा, आई होप उनका एग्जाम अच्छा हुआ हो। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही उसकी कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। अभिमन्यु कार से उतरा और सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगा। जैसे ही अभिमन्यु कॉलेज के अंदर गया उसने सामने की तरफ देखा जहां इप्सिता और नंदिनी खड़ी थीं। लेकिन उन्हें देखकर अभिमन्यु के कदम वहीं पर रुक गए। उसने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहा, ये इप्सिता और नंदिनी किससे बात कर रही हैं? उनके साथ ये लड़का कौन है? हो सकता है उनका कोई कॉलेज फ्रेंड हो। अभिमन्यु इतना बोलकर वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। क्रमशः